जिगर में तेरा प्यार, दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार,
दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।
ओम शांति। सभी फरिश्तों के द्वारा राजयोगी डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का एक हाथ की ताली से इस मौन भट्टी में अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि हम सभी को विदित है कि चिकित्सा क्षेत्र में आपने आध्यात्म और राजयोग को प्रतिस्थापित किया और आप हृदय रोग विशेषज्ञ होकर राजयोग के प्रयोग से विशेष कैट प्रोग्राम को आपने समस्त भारतवर्ष से लेकर विश्व भर में स्थापित किया है। आपको ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन मनन चिंतन करते हुए 29 वर्ष हो चुका है। आप प्यारे बाबा की मधुबन तपस्वी भूमि में विगत 19 वर्षों से अपना ईश्वरीय सेवाओं का योगदान दे रहे हैं। आपने देश विदेश में प्यारे बाबा की राजयोग की सेवा और चिकित्सा जगत की सेवा को दिया है। आप प्यारे बाबा की श्रीमत में सदा ही समाये रहते हैं और सच्चे सुख को अपने जीवन में अनुभव करते रहते हैं। प्यारे बाबा से विभिन्न गुण शक्तियों को अपने जीवन में सदा ही भरते रहते हैं, संपन्न अपने आप को करते रहते हैं। तो आज हम सबके समक्ष श्रीमत के सच्चे सुख को हम कैसे प्राप्त करें, इस पर हमें प्रकाश डालेंगे। हमारा निवेदन है डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से कि हम फरिश्तों के लिए श्रीमत के सच्चे सुख की प्राप्ति हम कैसे करें, इस पर हमें अपने अनुभव युक्त सारगर्भित वरदानों को प्राप्त कराएं। भ्राता डॉक्टर सतीश गुप्ता जी।
ओम शांति। हम सभी का सौभाग्य है कि हमें बाबा की चरित्र भूमि, तपस्या भूमि, कर्म भूमि में आने का मौका मिलता है। सभी को अच्छा लगा आके यहाँ पर? बहुत अच्छा चांस, गोल्डन चांस हम सबको मिला है। ये इतना पावरफुल वातावरण है जहाँ पर योग लगाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक योग लग जाता है ना। निरंतर योग की स्थिति हमें अनुभव होती रहती है। अभी मैं चाहूंगा कि हम सभी फिर दोबारा से 2 मिनट बाबा की याद में व्हाइट लाइट में बैठेंगे, ताकि अपने मन बुद्धि को इतना एकाग्र कर ले ताकि हम बाबा से, बाबा के श्रीमत द्वारा मिलने वाले सुख जो सच्चा सुख है उसकी अनुभूति कर सके। क्लास की बात नहीं है, उसकी अनुभूति हम कर सके, क्योंकि बिना अनुभूति के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पक्का नहीं हो सकता ना। अनुभूति हो तो फाउंडेशन पक्का होता है, बाकी क्लास से फाउंडेशन पक्का नहीं होता है, अनुभव होना चाहिए, राइट। जो भी बात हम करें उसका अनुभव हो। चलिए 2 मिनट फिर, और बिना एकाग्रता के भी अनुभव नहीं होता है ना। तो जितना मन बुद्धि हमारे एकाग्र हो, दुनिया से दूर हो, देह और देह की दुनिया से उपराम हो ना, अभी अपने मन बुद्धि को अपनी देह और देह की दुनिया से उपराम करके बस मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना को स्थिति में बैठे। ओम शांति। श्रीमद द्वारा सच्चा सुख की, सच्चे सुख की प्राप्ति कहें या सच्चे सुख की अनुभूति कहें, ये श्रीमद क्या है? जो हम रोज बाबा की मुरली सुनते हैं ना, ये क्या है? बाबा की श्रीमद है। मुरली का एक एक महावाक्य बाबा की श्रीमद। अगर हम श्रीमद में देखें तो बाबा की श्रीमद मुरली में जो आता है, कुछ बाबा की आज्ञाएं होती हैं ना, आज्ञा शिक्षाएं, समझानी और फरमान, डायरेक्शन भी कह सकते हैं, डायरेक्शन भी होते हैं। तो 5 बातें बाबा से हमें मिलती हैं यूजली। कौन कौन सी? आज्ञा, शिक्षा, समझाने, डायरेक्शन और फरमान, पांच बातें हमें बाबा से मिलती हैं। और उसका जो सोर्स है वो है मुरली, डेली के जो हम रोज की जो बाबा की मुरली सुनते हैं उसी में अगर हम ध्यान से देखें तो ये पांचों बातें समाई होती हैं, आज्ञा भी होती है और शिक्षाओं से भरी होती है और समझाने भी दी होती है और साथ साथ डायरेक्शन और फरमान भी होते हैं। आज्ञा क्या है बाबा की? बाबा की देखो श्रीमत की जब हम बात करते हैं, श्रीमत सिर्फ भगवान की होती है, श्री श्री की श्रीमत है, किसी भी देहधारी की श्रीमत नहीं कह सकते। कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी तपस्वी हो, कितना भी बड़ा, श्री कृष्ण की भी श्रीमत नहीं कह सकते ना, विष्णु की भी, या किसी भी यज्ञ के किसी भी बड़ी आत्मा, हमारे जो बड़े भाई बहने हैं, दादियां हैं, उनको श्रीमत नहीं कहेंगे। श्रीमत सिर्फ एक शिव बाबा की, राइट। तो श्रीमत बाकी सबकी मनुष्य मत है, और मनुष्य मत में मनमत और परमत समाई होती है। श्रीमत सिर्फ हमें जो श्रीमत माना श्री, जो हमको पवित्र, श्री माना पवित्र, जो हमें पवित्र बना दे, जो हमें सतो प्रधान बना दे। श्रीमत वो मत है जो हमें क्या बना दे, सतो प्रधान पावन बना दे। हमारे अंदर जितने भी पाप हैं, विकर्म हमने किए हैं, उनको सबको भस्म कर दे। अगर हम उस पर चलें, सच्चे दिल से चलें, तो वो उनको भस्म करके हमको क्या बना दे, सतो प्रधान पावन बना दे। अभी हम क्या हैं, क्या थे जब बाबा के बच्चे बनने से पहले, क्या थे हम? तमो प्रधान पतित थे। पतित किसे कहते हैं? तमो प्रधान को ही पतित कहते हैं ना। जब सातों एनर्जी आत्मा के अंदर, सात एनर्जी है ना, सात ऊर्जा है, सात गुण कहो, सात ऊर्जा कहो, जो इन्नेट है, इन्नेट माना इसके अंदर ही समाई हुई है। जैसे पानी के अंदर दो गुण है ना, कौन कौन से? एक ठंडक और दूसरा गर्मी। लगे तो हम क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? कहीं भी आदमी मर भी रहा होता तो क्या कहेगा, मुझे पानी पिला दो, है ना। पानी सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज है ना, ठंडक। और दूसरा कौन सा गुण है पानी के अंदर? जिस चीज में डालो वैसा बन जाता है ना, जिस चीज में डालो वैसा बन जाता है ना पानी, वो हर जगह एडजस्ट कर लेता है ना। उसका ये दूसरा बहुत अच्छा गुण है कि जिस चीज में डालो वैसा रंग, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है ना, और उसका आकार कैसा, कैसा आकार, जिसमें डालो वैसा ही बन जाए। लोटे में डालो लोटा बन जाएगा, लोटे जैसा बन जाएगा, उसमें गिलास में डालो गिलास जैसा बन जाएगा, मटके में डालो तो मटके जैसा, थाली में डालो तो थाली जैसा ना, ऐसा मतलब पानी के। ऐसे सूरज है, सूरज के दो गुण कौन से हैं? सूरज है ना, उसके अंदर भी दो एनर्जी है ना, उसके अंदर है, इनेट है। जैसे पानी को हम गर्म करते वापस ठंडा हो जाता है ना, कितना मर्जी पानी गर्म कर दो ठंडा बन जाएगा ना, ठंडा पानी फिर ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही उसके इनेट है, अंदर से अंदर के गुण है उसके। ऐसे ही सूरज के दो गुण कौन से हैं? प्रकाश और गर्मी है ना, लाइट और गर्मी। सूरज के अंदर से नेचुरल निकलती रहती है हमेशा, उसका गुण ही है। सूरज अगर उसमें गर्मी और प्रकाश ना दे तो सूरज कहेंगे क्या? हम कहें सूरज है ही नहीं, सूरज निकला ही नहीं अभी तक, है ना। अगर प्रकाश ना हुआ हो और गर्मी फील होने ना लगे तो हम क्या कहेंगे? सूरज अभी तक निकला ही नहीं, नहीं ऐसे बोलेंगे ना। तो सब जो आज्ञा है ना, आज्ञा बाबा की, आज्ञा है बाबा की, दो मुख्य आज्ञा है हम सभी, जो हमारा पहला पाठ है ना, क्या हमारा पहला पाठ, पवित्र भव योगी भव है ना, सदा पवित्र भव निरंतर योगी भव, ये हमारा पहला पाठ है ना, पवित्र भव योगी भव। तो ये बाबा की मुख्य आज्ञा तो ऐसे बहुत सारी, तो मुख्य आज्ञा अगर हम जीवन में ये दो मुख्य आज्ञा ध्यान कर लें तो बहुत बड़ी बात है। ये इसमें सब कुछ सारा ज्ञान समाया हुआ, सारा चारों सब्जेक्ट समाया, ज्ञान योग धारणा सेवा, ये चारों ही सब्जेक्ट इसके अंदर समाया हुआ। फिर शिक्षा जो है, शिक्षा कहते हैं जो मतलब बाबा हमको कुछ बातों की शिक्षाएं देते हैं ना, डायरेक्शन देते हैं। शिक्षा अलग चीज है, शिक्षा जैसे बाबा देते बच्चे अमृत वेले सुबह उठो है ना, ये शिक्षा है बाबा की कि बच्चे अमृत, तुम्हें अगर पवित्र बनना है, तुम्हें अपने विक्रम विनाश करने है तो सुबह सुबह उठ के सतो प्रधान समय में उठ के अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, ये बाबा की शिक्षा है। फिर बाबा जैसे कहते हैं कभी भी जैसे कोई भी विकारों से दूर रहो, है ना, झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो, ये शिक्षाएं हैं हमें जैसे इस तरह की। मैं जस्ट डिफरेंस बता रहा हूं क्या, आज्ञा में, आज्ञा मतलब ऑर्डर है ना, फिर समझानी, जैसे बाबा कुछ बातों के लिए बाबा कहता है अपने घर व्यवहार में रहते कैसे चलो, जैसे कहते बाबा कहते भाई भाई समझो, भाई भाई की दृष्टि पक्की करो, अपने बच्चों कैसे चलाओ, कोई पैसा खर्च करना कैसे बाबा से पूछो, हर बात के लिए बाबा से डायरेक्शन लो, तो बाबा इसके लिए समझाने देते हैं। हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमारे चाहे हम सेंटर पे रहते हैं चाहे घर व्यवहार में रहते हैं, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो बाबा के सामने हम रखते हैं अमृत वेले, तो बाबा हमें समझाते हैं बच्चे नहीं तुम ऐसे करना, तुम ऐसे करना, युक्ति देते हैं हमें, ठीक है, और फिर हमें डायरेक्शन देता कुछ बाबा, जैसे बाबा कहते 500 रुपए की ड्रिल करो, बाबा ने डायरेक्शन दी ना 500 रुपए की ड्रिल करो, सोने के पहले अपना पोता मेल मुझे दो, जैसा भी आपने अच्छा बुरा किया सब मुझे बताओ, ये डायरेक्शन है बाबा की। जैसे कह सकते हैं अमृत वेला, कहीं अमृत वेला भी बाबा की डायरेक्शन है, रोज मुरली सुना बाबा की डायरेक्शन है ना। फरमान क्या है बाबा का, बाबा का फरमान है इस समय क्या है, बाबा का फरमान है देहे, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, चार बातें आती हैं जो जिसमें आज सभी मनुष्य फंसे हुए हैं। मनुष्य में मनुष्य के, मनुष्य के डेफिनेशन पता है क्या है, मनुष्य किसे कहते हैं, मनुष्य माना मन के वश में, मनुष्य कौन, मनुष्य मनुष्य है ना, मन के वश में है ना, जो मन के वश में है वो मनुष्य कहलाते हैं, ठीक है, मन माना जो हमारी स्मृति, मन में चार बातें आती, स्मृति, यादें है ना, वृत्ति, मन के चार एस्पेक्ट्स हैं, जो हमारी मेमोरीज हैं, स्मृति है, वृत्ति माना एटीट्यूड, स्मृति के अनुसार हमारी वृत्ति बनती है और वृत्ति से वायुमंडल बनता है। जैसे संडे की मुरली आपने सुनी ना, बाबा ने क्या कहा, अपनी वृत्ति दृष्टि और वाइब्रेशन से क्या करो, और जो आपने शक्तिशाली अनुभव प्राप्त किए उसके द्वारा आप दूसरों को अनुभव कराओ। जो दूसरे एक घंटे में आपको कोर्स कराते हैं, दूसरों का कोर्स कराते हैं, एक घंटे क्लास भाषण करते हैं, उसका आप अपनी शक्तिशाली वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन और अनुभव 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 के आधार पे उनको क्या करो। सपोज मैं अभी अपनी शक्तिशाली स्थिति में बैठा हूं, उसके अनुसार वृत्ति है, उसी के अनुसार मेरी वाइब्रेशंस हैं, उसी अनुसार मेरी दृष्टि है, तो क्या मुझे ज्ञान सुनाने की आवश्यकता है क्या, नहीं, अपने आप फील होगा सामने वाले बैठने वाले को कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे हम मंदिर में जाते हैं ना, जिसमें हमारी श्रद्धा होती है, तो देह का भान अपने आप ही भूल जाता है, नहीं भूल जाता है, या देह याद रहती है, अपना नाम मान शान भूल जाती है ना, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, जाएंगे मंदिर में तो जाके अपना नाम मान शान भूल जाएंगे, अहंकार खत्म हो जाएगा, देह अभिमान खत्म हो जाएगा, देह भान खत्म हो जाएगा, पैरों में झुक जाएंगे, है ना, वो किसी के सामने झुकते नहीं है किंतु वहां जाके झुक जाते हैं ना, तो देह भान खत्म हो जाए, ऐसी हमारी रूहानी वृत्ति हो, ऐसे हमारी रूहानी भावना हो, रूहानी वाइब्रेशंस हो कि सामने वाले का चेंज हो जाए, तो ऐसा उसको अपनी आत्मिक स्थिति का भान आ जावे कि मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं। यही तो हम ज्ञान पहले लेसन तो ये कराते ना, एकदम से चेंज हो जाए, मैं आत्मा हूं, मेरा पिता परमात्मा है, मैं परमात्मा की संतान हूं, हम मुंह से तो सभी गाते हैं, आरती सभी गाते हैं, पर उसको अनुभूति हो जाए सचमुच मेरा कोई इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा सिर्फ एक शिव बाबा है, या परमात्मा सिर्फ मेरा है, उसी वही मेरा मां बाप सब कुछ वही है, और फिर जो कुछ बीत गया ड्रामा में, जो कुछ बीत गया जो अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा, ये ऑटोमेटिक उसको इस हमारे इस वाइब्रेशन में समझ आ जाए, तो हमारी ऐसी स्थिति बननी चाहिए ना। तो जैसे मैं मन की बात कर रहा था, मन माना स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प, चार बातें इसके अंदर आती है ना, इंग्लिश में हम इसको टीम कहते हैं, टी फॉर थॉट्स माना विचार संकल्प, ई फॉर इमोशन माना भावनाएं, और ए फॉर एटीट्यूड माना वृत्ति, और मेमोरीज स्मृति वृत्ति भावना संकल्प। स्मृति से हमारी स्थिति बनती है, जैसे हमारी स्मृति होती है वैसे हमारी स्थिति बनती है, जैसे स्मृति मेरे अंदर ही होती है, सपोज मैं समझू कि मैं बाबा ने मुझे वरदान दिया बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, ये मेरे अंदर स्मृति है ना, ये सम्मान मेरे अंदर है, तो ये अंदर मेरे अंदर समाया हुआ, इस स्मृति के अनुसार मेरी क्या बनेगी, वृत्ति, वृत्ति माना वृत्ति से वायुमंडल बनता है। जैसे मैं सपोज यहां इस वृत्ति से बैठा हूं कि मैं मास्टर शिव शक्तिमान हूं, तो इससे जो वायुमंडल बनेगा ना, जो मेरे आसपास जो वायुमंडल बनेगा, एक्चुअली वायुमंडल का मतलब बेसिकली ऑरा होता है। ऑरा समझते हैं, आभा मंडल। आप जितनी पावरफुल स्थिति में बैठते हैं, स्थिति माना जिस स्मृति में बैठते हैं, स्मृति से स्थिति बनती है, तो जितना पावरफुल आप स्मृति में बैठेंगे, इतनी स्मृति को इमर्ज करेंगे, उतनी पावरफुल आपकी वृत्ति बनेगी। उतना मतलब उतना पावरफुल, जैसे दादी हमारे आती हैं, जब बाबा आते हैं, जब बाबा की पदरामणी होती है, तो क्या होता है, सारा वायुमंडल कैसा बन जाता है, रूहानी हो जाता है ना एकदम से, देह का भान बिल्कुल भूल जाते हैं ना हम सभी। पूरे डायमंड हॉल का वायुमंडल कैसा हो जाता है, रूहानियत से भरपूर ना, क्योंकि बाबा किस स्मृति, किस स्मृति से आते हैं, क्या स्मृति है बाबा को, मैं रचता हूं है ना, सारे बच्चे मेरी रचना है ना? मैं सबका बाप हूं, मुझे सबको पतित से पावन बनाना है, सबको सतयुग के लायक बनाना है, ऐसा होता नहीं होता। तो वो स्मृति है ना से वृत्ति बन जाती है, राइट। ऐसे ही हम जहां चले, हम मास्टर रचता है, हम मास्टर स्वशक्तिमान है, हम मास्टर ज्ञान के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, शांति के सागर हैं, जो भी बाबा के सात गुण, जो बाबा ने सात गुणों का सागर बाबा है, हम सात गुणों के स्वरूप हैं, उनकी उनकी जैसे स्मृति हमेशा समाई रहे, तो क्या होगा, वो वायुमंडल आसपास सब जगह फैल जाएगा। तो स्मृति से स्थिति, वृत्ति से वायुमंडल, और फिर वृत्ति से हमारी भावना बनती है, मेरा मेरी वृत्ति में ये आ गया कि मैं कौन हूं, राइट। तो उससे उससे फिर भावना पैदा होती है, फिर भावना से वाइब्रेशन निकलते हैं। वाइब्रेशन कहां तक जाते हैं, वाइब्रेशन हमेशा दो आत्माओं के बीच में जाते हैं, जिसके प्रति आप शुभ भावना रखते हैं उसके और आपके और उसके बीच में जाते हैं। जब जब मेरी वृत्ति बन गई, मेरी वृत्ति में आ गया कि मैं मुझे सबका कल्याण करना है, हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, मुझे सबको बाबा का ज्ञान देना है, बाबा का संदेश देना है ना, सबको बाप जैसा बनाना है, तो क्या होगा, तो वाइब्रेशन कैसे जाएंगे सब आत्माओं के प्रति, भावना कैसी होगी, शुभ भावना शुभकामना। तो वाइब्रेशन का असर सारे हजारों किलोमीटर दूर तक भी होता है, तो वाइब्रेशन का दूर तक जाता है, ठीक है। और संकल्प, फिर जैसी भावना होती है ना, जिसके प्रति जैसी भावना होगी, अच्छी भावना होगी तो अच्छे संकल्प चलते जाए, अच्छे विचार, और बुरी भावना होगी तो बुरे विचार चलते हैं, सभी का अनुभव है ना, तो बुरे विचार चलने शुरू हो जाते हैं। तो संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्पों का असर सारे विश्व में होता है ना, राइट। तो ये जो मन है ना हमारा, तो मनुष्य माना मन, मन माना हद है ना, मन में जब मनुष्य माना हद में रहने वाले, क्योंकि मन मन की जो पहुंच है ना, मन की जो मार है कहां तक है, मन की पहुंच पांच कर्म इंद्रिय तक है, आंखों से जो दिखाई देता है, कानों से जो सुनाई देता है, मुख से जो बोल सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, नाक से जो सूंघ सकते हैं, हाथों से जो अनुभव कर सकते हैं, इनकी लिमिटेड है, ठीक है। तो बाबा जब आते हैं तो बाबा सबसे पहले हमें क्या करते हैं, सबसे पहली जो शिक्षा देते हैं बच्चे, कि तुम देह नहीं तुम आत्मा हो। सबसे पहला हमारा आंख, जो आज की मुरली थी ना पहला देही, कल की मुरली में वही थे, देही मानी भव है ना, जो पहला पहला हमारा पाठ है वो क्या है, हमारा पहला पाठ और आखिरी पाठ क्या है, एक्चुअली ये आज्ञा भी है बच्चे, देह नहीं अपने को आत्मा समझो है ना, शिक्षा भी है, डायरेक्शन भी है, और फरमान भी है ना, एक्चुअली ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देही मानी भव, क्योंकि मुझे जो पवित्र भव योगी भव, इसके लिए बेसिक चीज क्या चीज है, पवित्र कब बनेंगे, जब अपने को आत्मा समझेंगे, योगी कब बनेंगे, जब अपने को आत्मा समझेंगे है ना, ये हमारा मूल मूल मंत्र है, जैसे जीवन का मूल मंत्र है ब्राह्मण जीवन का ना। तो अगर हम शिक्षा भी, जैसे आज बाबा कहते हैं डायरेक्शन, बाबा ने 500 रुपए की डायरेक्शन दी कि 500 रुपए की ड्रिल करो रोज, साकारी आकारी निराकारी स्वरूप की ड्रिल करो, बार बार ड्रिल करते रहो, जब मौका मिले 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड, बीच में जब मौका मिले पानी पीते हुए, हर समय डर ये ड्रिल होते रहना चाहिए। तो वो ड्रिल जैसे ये बाबा, इसका सबका बेसिक चीज क्या है, आत्ममानी स्थिति, देह मानी स्थिति है ना। तो ये जो है हमें बार 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 चलते फिरते अभ्यास करने का है। तो इसके लिए मैं बेसिक जो थोड़ी सी हम तो इसमें हम लोग थोड़ा सा मैं यहां आपको ले जाता हूं कि सच्चा ब्राह्मण जैसे कहते हैं ना, सच्चा ब्राह्मण क्या है। बाबा ने कहा ना सच्चे ब्राह्मण बनो, तो सच्चा ब्राह्मण माना पहले हम शूद्र थे, शूद्र माना हमारी बुद्धि किसमें थी, देह, शूद्र माना जिसकी बुद्धि चार बातों में फंसी हुई है, देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ और देह के स्वभाव, चार बातें ना, देह, देह के सरल संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, है ना। देह तो हम सब जानते हैं, हमारी देह, हमारी बुद्धि, हमारे देह में थोड़ी सी तकलीफ होती क्या होता है, क्या होता है, घुटने में दर्द हो, थोड़ा बीपी ऊपर नीचे हो जाए, है ना, थोड़ी सांस में दिक्कत हो, छाती में दर्द हो रहा हो, कितना हमारी बुद्धि उधर जाती है ना। तो हमारी बुद्धि उधर लगी रहती, नहीं लगी रहती, थोड़ी सी कोई चोट लगी हो, है ना, तो कितनी बुद्धि उधर लगी रहती। तो बुद्धि में मतलब बुद्धि में और मन में यही बसा रहता है, देह बसी बहुत गहरी बसी हुई है। फिर देह के संबंध, हमारा बच्चा बीमार हो, युगल बीमार हो, मां बीमार हो, है ना, बाप बीमार हो, तो क्या होता है, बुद्धि में वही चलता रहता है ना, नहीं चलता रहता, क्योंकि ये चीजें हमारी बुद्धि में बसी हुई है। बुद्धि के भी चार पार्ट हैं, मन के चार पार्ट बताए ना, बुद्धि के भी चार पार्ट हैं। जो सबसे अंदर का जो पार्ट है, अंदर का एस्पेक्ट, पार्ट नहीं कहेंगे, सॉरी पार्ट गलत शब्द है, चार एस्पेक्ट है, चार डायमेंशन है। जो पहली डायमेंशन या एस्पेक्ट कहें वो दिल है, जिसे इंग्लिश में कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियंस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं, जिसको तीसरी आंख भी कहते हैं, जिसको गोद भी कहते हैं, ना, जिसको पलके भी कहते हैं, ना, नहीं। तो ये जो दिल जो है ना, मतलब दिल माना आत्मा का दिल जो है, उसमें सबसे ज्यादा ये आत्मा के सात गुण, आत्मा जो एक पॉइंट ऑफ एनर्जी है ना, कॉन्शियंट पॉइंट ऑफ एनर्जी है, कॉन्शियंट मतलब चैतन्य ज्योति बिंदु है आत्मा, इन आंखों से ना देखने वाली, ये जो है जो, इस चैतन्य ज्योति बिंदु से सात एनर्जी निकलती रहती है हमेशा। जब आत्मा सात गुणों में भरपूर है, सात गुण से मतलब सतो प्रधान माना, सतो माना सात, सात प्रधान माना भरपूर, जब सातों गुणों में भरपूर है तो हमारी दिल सच्ची और साफ है, सच्ची है। तो इस दिल में सिर्फ सात गुण भरे हुए हैं, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान सार रूप में एबीसीडी, आत्मा, बाबा, कनेक्शन, ड्रामा, मत आत्मा, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है। मुख्य नौ संबंध हम अनुभव करते हैं बाबा से, माता, पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा, ये नौ मुख्य संबंध की अनुभूति हम सबको होनी चाहिए। उसकी संबंध की अनुभूति पे फिर बहुत अगर हम डिस्कस करें अनुभूति में जाए तो आधा आधा घंटा एक अनुभूति में टिक सकते हैं, है ना, तो आधा आधा घंटा करो तो नौ कितना, साढ़े चार घंटा योग लगातार हो सकता है ना इसी स्थिति में। और बहुत इसका विस्तार कर सकते हैं, माँ का अनुभव क्या होना चाहिए, बाप का अनुभव क्या होना चाहिए, टीचर का अनुभव क्या होना चाहिए, है ना, सतगुरु का अनुभव क्या होना चाहिए, बंधु, बंधु माना बड़ा भाई, बड़ा भाई का अनुभव क्या होता है ना, दोस्त का अनुभव क्या, सखा, दोस्त का अनुभव, साजन का अनुभव, सर्जन का अनुभव और फिर बच्चे का अनुभव। तो ये हमारे एक एक संबंध की अनुभूति, योग क्या है बेसिकली, इसी एक एक संबंध की अनुभूति में खो जाना, खोए रहना ही योग है, एक संबंध की अनुभूति में खोए रहो, यही योग है। संबंध से हमेशा योग होता है ना, जहां संबंध है तीन तरह से योग होता है ना हमारा, जहां स्नेह होता है वहां हमारा योग माना कनेक्शन, वहां हमारा कनेक्शन लगता है, जहां से संबंध होता है वहां हमारा बुद्धि जाती है, कनेक्शन लगता है, और तीसरा जहां से हमारी प्राप्ति होती है। तो हमारी तीनों चीजें एक ही से हैं, स्नेह भी हमारा शिव बाबा से है क्योंकि उसका संबंध कैसा है, हमारा स्नेह उससे कैसा है, अनकंडीशनल, हमारा संबंध उससे कैसा है, स्नेह कैसा है, अनकंडीशनल, कोई इसमें बाबा ने कंडीशन नहीं बना के रखी है, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम गोरे हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम मुझे अनपढ़ी चाहिए, बाबा ने ऐसे बोला क्या, नहीं, तुम जैसे हो, जो हो जैसे हो मेरे हो, काले हो, छोटे हो, गुटके हो, कैसे भी हो, कैसे भी आपकी स्थिति, शरीर की स्थिति, मन की स्थिति, जो भी है, अकल की स्थिति, बाबा को इससे कोई भेद नहीं, अनकंडीशनल है। कितने मर्जी पाप किए हो तुमने, डाकू हो, चोर हो, कुछ भी हो, स्मगलर हो, है ना, कुछ भी पहले पाप, महापाप किए हो, बाबा को कोई कंडीशन नहीं। जिस समय बदलना चाहो, आधी रात बदलना चाहो, बाबा आपके साथ तैयार है, अनकंडीशनल। दूसरा डिग्निफाइड, डिग्निफाइड में ना सम्मान वाला, रेस्पेक्ट वाला। बाबा कितना भी बच्चा कैसा भी हो, बाबा कभी भी उसको हे दृष्टि से नहीं देखता है, सम्मान से, ये मेरा राजा बच्चा है। मीठे मीठे का मतलब समझते हो, मीठे मीठे का क्या मतलब, बाबा बोलते मीठे बच्चे, मीठे बच्चे का मतलब क्या है, रोज बाबा मुरली शुरू करते हैं, मीठे बच्चे शुरू करते हैं, कैसे शुरू, मीठे बच्चे का क्या मतलब है, क्या करें, डायबिटीज वाले बच्चे, कौन से वाले बच्चे, मीठा माना सत्व प्रधान, मीठा माना सत्व प्रधान। जब बाबा मीठे बच्चे बोल रहा है तो मीठे का मतलब है सत्व प्रधान, सत्व प्रधान माना सातों गुणों से भरपूर। बाबा हमारा अनादि और आदि स्थिति को देख करके बोलता है। अनादि में मेरा बच्चा कैसा था, ये बच्चा बैठे हैं, हम बच्चे कैसे थे, हम अनादि स्वरूप मतलब परमधाम में सत्व प्रधान थे, फुल थे सातों एनर्जी में, और आदि में हम कैसे थे, सत्व प्रधान थे। तो मुझे ये बात, मुझे उससे पहले पता नहीं थी, किंतु तो याद होगा बाबा के पीछे मुरली चली थी तो बाबा ने कहा था, बाबा मीठा मीठा मीठे का पहाड़ है, स्वीटनेस का, स्वीट का पहाड़ है ना, बाबा मीठे बच्चे, बाबा स्वीट का पहाड़ है और तुम्हें बाबा जैसा मोस्ट स्वीटेस्ट बनना है। तो फिर मैंने बाबा से, हम लोग मुरली के बाद वॉकिंग करते हैं ना, 45 मिनट सैर करते हैं, तो हमेशा बाबा की जो मुरली चलती है उसी पे चिंतन करते हुए, मनन चिंतन करते हुए, मुरली मुरली के पॉइंट्स को मनन चिंतन मंथन करते हुए वॉकिंग 45 मिनट करते हैं बाबा की। कभी और कुछ सोचते हुए वॉकिंग नहीं करते, सिर्फ बाबा की मुरली, जो बाबा ने मुरली चलाई उस दिन की, उसी के डिफरेंट पॉइंट्स को गहराई से मनन करते हुए, चिंतन मंथन करते हुए मुरली करते हैं, चलते रहते हैं। तो बाबा से मैंने पूछा, बाबा मेरे को समझ नहीं आया आपने मीठे इसका, स्वीट का पहाड़ का, स्वीट का पहाड़ क्या है, स्वीट का पहाड़ क्या होता है। तो फिर बाबा आपने कहा, मुझे कहा कि तुम्हें बाप समान मोस्ट स्वीटेस्ट बनना है, इसका क्या मतलब हुआ। तो बाबा ने कहा, बच्चे बाबा स्वीट का पहाड़ है, मतलब स्वीट माना मीठा माना सत्व प्रधान, बाबा सातों गुणों का पहाड़ है ना? मतलब बाबा का सात गुणों का सागर है ना, कभी सागर बोलता है कभी पहाड़ बोलता है ना, तो बाबा सात गुणों का पहाड़ है ना, और तुम्हें क्या बनना है, सातों गुणों में भरपूर बनना है, तुम्हें भी बाबा जैसा क्या बनना है, मोस्ट स्वीटेस्ट बनना है ना। तो मतलब तो उस दिन से मुझे समझ आया कि मीठे माना सत्व प्रधान। फिर बाबा लास्ट में बोलता है, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों को, है ना, सिकिलरे मतलब मीठे मीठे माना अनादि, अनादि सत्व प्रधान, हमारी पावन सत्व प्रधान स्थिति, और फिर आदि पावन सत्व, दोनों स्थिति को बाबा देख के फिर हमें याद प्यार देता है। मीठे मीठे सिक्की लदे माना, फिर जो मेरे, हम अब कितने साल हो गए वहां से पिछड़े हुए, अनादि स्वरूप परम धाम से 5000 साल हो गए, और जो हमारा सत्व प्रधान आदि आदि स्वरूप था वो भी 25 साल तो हो गए हमें पिछड़े बाबा से ना। तो बाबा फिर उन दोनों बातों को देख के सिक्की लदे बोलता है, मीठे मीठे सिक्की लदे, आगे रूहानी बच्चों को ऐसे बोलते हैं ना बाबा, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, है ना। तो इस तरह से बाबा, मतलब इसका मतलब फिर मुझे उस दिन समझ आया, नहीं तो मैं हमेशा सोचता था इस तरह से बाबा क्यों बोलता है ना, मीठे मीठे का मतलब क्यों बोलता है, तो उस दिन मुझे समझ आया, है ना। तो ये जो है, मैं जो, तो बुद्धि का मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया दिल, तो दिल बना सत्व प्रधान, सत्व प्रधान बना सातों गुणों से भरपूर, है ना। फिर दिल में सात गुण है ना, अगर ज्ञान, अच्छा ज्ञान से पवित्रता है, जितने ज्यादा हम एबीसीडी को बार बार, अब मनन किसे कहते हैं, मनन माना रिवाइज करना, मनन जो आपने सुना उसको मन में बार बार रिवाइज करो, मतलब जैसे जैसे जुगाली करते हैं ना, खाना जल्दी जल्दी खा लेती गायें, फिर पेट में चार कोष्ठक, चार उसके चैम्बर होते हैं, एक चैम्बर में खाना कैसे रहता है, जो ऐसे कच्चा खाना, मतलब जो बिना चबाया खाना, उसको फिर बाहर निकालती है ना, फिर उसको चपा, फिर उसको मुंह में लेके फिर उसको जुगाली करती है ना। तो जो आपने खाया उसको फिर दोबारा रिवाइज करो, बुद्धि में स्मृति में लाओ, मनन करो, फिर चिंतन। चिंतन माना उसको फिर अपने से मिला के देखो। बाबा ने कहा बच्चे तुम, बच्चे तुम बहुत मीठा बनो, तुम किसी सबसे मीठा बोलो, तुम कभी कड़वा मत बोलो, तुम कभी क्रोध मत करो। बाबा ने तो डायरेक्शन दे दी, शिक्षा दे दी। अब मेरे को तो क्रोध आता है, कोई कुछ कहे मेरे को इरिटेट करे तो मैं तो इरिटेट हो जाता हूं, है ना। तो फिर चिंतन करो, बाबा मेरे अंदर तो यह होता है। चिंता एक चिंता होती गलत नेगेटिव, है ना, और चिंतन होता है पॉजिटिव, मतलब अपने को सुधारने के लिए चिंतन, अपने आप से मिला के देखो बाबा की डायरेक्शन और मेरी क्या स्थिति है। तो चिंतन करो, बाबा ये चीज मेरे अंदर कैसे आएगी, बाबा ये मैं अपने आप से चिंतन करो कि ये चीज मैं कैसे निकालूं। बाबा कह रहे धीरज रखो, कि तुम, मैं तो धीरज नहीं रखता हूं, मेरे अंदर तो जल्दी आ जाती है, तुरंत होना चाहिए काम, है ना, बेचैनी हो जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल, मेरे अंदर धीरज है, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, है ना। बाबा कहते धीरे धीरे बोलो, है ना, मैं तो जल्दी जल्दी बोलता हूं, है? अपने आप से बात कैसे करूं मैं इसको, मैं क्या एक्शन प्लान बनाऊं अपने अंदर कि मेरी ये नेचर बदल जाए। आपको पता है जितनी बीमारियां हमको आती हैं, चाहे हार्ट की, चाहे ब्लड प्रेशर की, चाहे डायबिटीज की, चाहे हमारी एसिडिटी की, सांस की, है ना, दमे की, माइग्रेन की, है ना, या हड्डियां खराब होना, ये सब की सब हमारे बचपन की आदतों के आधार पर निर्भर होता है। 11 साल की उम्र तक हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ करते नहीं है, करते दूसरे हैं, हमारे माँ बाप करते हैं, हमारे भाई बहन करते हैं, हमारे टीचर करते हैं, हमारे क्लास के स्टूडेंट्स करते हैं, 11 साल की उम्र तक जो कुछ हम देखते हैं, आंखों से सुनते हैं, खाते हैं, सूंघते हैं, हाथों से करते हैं, वो पैसिवली हमारे अंदर एब्जॉर्ब होता रहता है, उसको हम पैसिवली एक्सेप्ट करते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, सपोज कोई व्यक्ति है, वो अपनी उसकी माँ, उसके मतलब घर में कोई 4-5 भाई हैं, माता पिता बैठे हैं, माँ बोल रही है कोई काम के लिए, बोल रही है कि काम कर लो, ये काम करो, कोई नहीं करता है या बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, पिताजी ने बोला जल्दी जल्दी करो, डांट के बोला, उन जल्दी जल्दी काम होना शुरू हो गया, फिर देखा फिर भी स्लो कर रहे हैं, ठीक से नहीं कर रहे हैं, पिताजी ने गुस्सा किया, सबने काम तेजी से करना शुरू कर दिया, तो बच्चे के मन में इंप्रेशन पड़ गया जल्दी करने से, गुस्सा करने से काम जल्दी होता है और अच्छा होता है। और एक बार नहीं, दसियों बार उसने देखा ऐसा होता है, तो उसके अंदर रिकॉर्ड हो गया जल्दी करना और गुस्सा करना बहुत जरूरी है। कोई पैदा होता जल्दीबाजी करता हुआ पैदा होता है क्या, मम्मी जल्दी जल्दी दूध पिलाओ, जल्दी जल्दी ये करो, ऐसे करता है क्या, कोई जल्दी करता पैदा होता है, कभी नहीं ना। तो शांत 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 रहता है, धीरज होता है, हर चीज का उसको, बच्चे के अंदर सातों गुण भरपूर होते हैं, क्योंकि तो जैसे जैसे फिर वो देखता जाता है ना, फिर देखता है माँ, उसकी माँ जब कोई काम, कोई माँ कुछ कह रही है, कोई नहीं सुन रहा उसकी, है ना, तो माँ फिर रोके दिखाती है, तो देखा पिताजी भी सब उसके पीछे भागने पड़ते हैं, मतलब उसकी उसका काम करने के लिए सब एग्री हो जाते हैं, तो हाँ कोई काम ना हो तो रोके दिखाने से काम अच्छा होता है, है ना? तो बच्चे को रिकॉर्ड हो जाता है कि हाँ रोके दिखाओ ना तो काम हो जाता है ना? ऐसे देखा टीचर है स्कूल में, अच्छा फिर माँ को कोई या पिताजी को कोई दूसरा बड़े भाई ने आके बात बताई, माँ ने बहन ने बात बताई, माँ ने इसको डांट दिया, ऐसे नहीं बोलते। फिर दूसरा देखा, दूसरे भाई को देखा, फिर वो उसने बताई, फिर उसने उसको भी डांट दिया या पिताजी ने डांट दिया, तो मतलब मन की बात किसको बताते नहीं है, बताने से डांट पड़ती है। तो बच्चा शुरू से रिकॉर्ड कर ले कि अपने मन की बात कहना, किसी को कहना, या किसी ने बताया था फिर माँ ने उसी बात को लेकर उसको बार बार उसको छेड़ते हैं, वे दूसरे भाई उसको छेड़ते हैं बार बार, तेरे अंदर तो ये कमजोरी है, तू तो ऐसा है, तू तो ऐसी है ना? नहीं? तो ये हमारे अंदर रिकॉर्ड हो गया कि अपने मन की बात शेयर करना सेफ नहीं है, फिर वो लोग बाद में बदनाम करते हैं, लोग बाद में तंग करते हैं, है ना। तो इस तरह से फिर डरने की आदत पड़ी, कोई बात, मां डरती है, भाई डरता है, बहन डरती है, उसको देख के भी रिकॉर्ड हो गया। इसलिए हर बच्चे की पर्सनैलिटी 11 साल की उम्र तक अलग ही बन जाती है। ये हमारे मूल संस्कार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक तो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं, ओरिजिनल माना जिससे हम पैदा होते हैं, ये 7 गुण हमारे ओरिजिनल स्वभाव संस्कार स्वभाव हैं। ये सात गुण ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद और शक्तियां, ये हमारे ओरिजिनल स्वभाव है। असो माने आत्मा, आत्मा का भाव है ये। और जो फिर हमारे जो ये हमारे मूल, मतलब बचपन से लेकर 11 साल की उम्र तक जो हमने ग्रहण किया, इसके अनुसार हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। और फिर उसके कारण से फिर हमारे अंदर सारी प्रॉब्लम आने लगती है। और फिर 12 साल की उम्र में हमारे हार्मोन निकलने शुरू होते हैं, सेकेंडरी हार्मोन्स, जो सेक्सुअल हार्मोन कहते हैं, सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, लड़के के अंदर लड़की के अंदर, उसके अनुसार फिर उसकी नेचर बननी शुरू होती है। उसके चेहरे पर परिवर्तन आ जाएगा, चेहरा फिर वैसा ही बन जाता है। किसका चेहरा देखो तो बहुत सॉफ्ट होता है, किसका देखो बहुत कड़क होता है, किसका देखो तो बात पत्र होने जैसा चेहरा होता है ना, नहीं होता है वो। फिर सारी उम्र वही नेचर चलती रहती है, उसी के अनुसार फिर बीमारियां हमको आती है। बाबा ने इस बात पे स्पेशल अटेंशन दिया कि बच्चे जो तुम्हारे ओरिजिनल संस्कार हैं, ओरिजिनल स्वभाव संस्कार, उसको पहचानो, मूल संस्कार को नहीं, मूल को नहीं। ये तुम्हारे, इसके तुम्हारे ओरिजिनल नहीं है, एक्चुअली ये जो हमारे ओरिजिनल संस्कार, ओरिजिनल संस्कार ये मूल वाले जो बचपन में हमने सीखे, इनको हम अपना समझ लेते हैं। ज्ञान में 40-50 साल चलने के बाद भी इसको हम परिवर्तन नहीं करते। ये स्वभाव संस्कार ऐसे हो जाते हैं जैसे आपके घर में एक नौकर है जो आपको उठते ही चाय देता है, उठते ही आपको, मतलब आपको नहाने के लिए गर्म पानी करके देता है, सारा कुछ खाना टाइम पर तैयार करके देता है, आपकी हर समय मदद करता है। आप सोचते इसके बगैर मेरा जीवन संभव नहीं है, नहीं ऐसा सोचते। और वही नौकर एक्चुअली क्या कर रहा है, आपके, आपका जो भी पैसा है ना, सब साइड में लगा रहा है, क्योंकि आपको उस पर विश्वास है, ब्लाइंड फेथ है, वही आपका सब कुछ खाली करता जा रहा है चुपचाप। तो आप उसको अपना दोस्त समझते हो, है एक्चुअली वो आपका दुश्मन, आप उस पर आधारित हो गए। ऐसे ही जैसे हम क्या करते हैं, बचपन से मुझे आदत पड़ गई कि मैं जब जल्दी करता हूं, जल्दी करने से काम, जल्दी करने बोलने के बाद काम नहीं होता, गुस्सा करने के बाद काम नहीं होता, रोने के बगैर काम नहीं होता, है ना, काम पूरा नहीं होता, तो ये मेरे जिसमें दोस्त बन गए। और यही हमको सच्चा ब्राह्मण नहीं बनने देते, बाबा का आज्ञाकारी नहीं बनने देते, बाबा की श्रीमत को चलने, श्रीमत पर चलने नहीं देते। मनमत परमत पे हम चलते ही रहते हैं बाबा का बनने के बाद भी, 30-40 साल 50 साल 60 साल के बाद भी भावुक होते रहते हैं, सेंसिटिव होते रहते हैं, किसी की वीकनेस को, मतलब हम सोचते हैं कि नहीं है, इसको हम ऐसे करें, वहां भी मर्यादा तोड़ के उसको मदद कर देते हैं, कहते हैं हम तो उसका भला कर रहे, भला नहीं कर रहे, वो अपनी मां के अंदर देखा था हमने, मां हमारी ऐसे करती थी, उससे प्रभावित होकर आज भी हम उसी असर में, बाबा के असर में नहीं है, किसके असर में, मां के असर में ना, बाप के असर में, भाई के असर में, अपने टीचर के असर में। तो आज मैंने सोचा था क्लास में ये बात मैं मुख्य रूप से करूंगा कि हमको इस पे बहुत ध्यान करने की आवश्यकता है कि श्रीमत को हम हूबहू पालन करें। इसके लिए जो हमारे जो बैसाखी है, हमारी बैसाखियां हैं जिनको हम सकते हैं, हम ये हमारी है, हमारी नहीं है, ये हमारी नहीं है, ये हमारी मूल नेचर नहीं है, इसके साथ पैदा नहीं हुए थे, तो दिल में हम, दिल में ये बस गई, गहरी बस गई, बहुत गहरी बस गई दिल में हमारे। अभी क्या हुआ, जब सत्व प्रधान थे, सातों गुणों से भरपूर थे, उस समय हमारे दिल में कोई नहीं था, ना मां था, ना बाप था, ना, जब सत्य में पैदा हुए ना, हमारे दिल में सिर्फ एक सात गुण भरे हुए थे, कुछ और नहीं भरा था, मां बाप भी नहीं भरे हुए थे, इसलिए किसी के प्रति मोह नहीं था, मोह जीत थे, देखा भाने नहीं था, इसलिए कोई विकारी नहीं था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का एकदम संपूर्ण निर्विकारी थे। किंतु जब हम द्वापर युग में आए, सबसे पहले हमारे अंदर क्या हुआ, आत्मा की एनर्जी जो 50% 100% थी ना, त्रेता युग आते आते 75% हुई, और कलयुग और द्वापर आते आते 50% हो गए। 50% होते ही क्या हुआ, अच्छा दिल के बाहर, सॉरी मैं यहां पर बीच में वो कर रहा, दिल के बाहर विवेक है, दिल के बाहर, नेक्स्ट एस्पेक्ट, दिल के बाहर विवेक माना परखने की शक्ति, राइट के रॉन्ग, विजडम जिसे कहते हैं, उसके बाहर बुद्धि है, बुद्धि प्रॉपर निर्णय करने की शक्ति, और उसके बाहर चित्त है, सबकॉन्शियस माइंड है। तो ये चार चीजें बुद्धि के अंदर आती हैं, और उसके बाहर हमारा मन हो गया, तो यही हमारा सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि और मन। और संस्कार क्या है, जो स्मृतियां हैं वो संस्कार हैं, जो स्मृतियां हैं ना, जो बताया मैंने स्मृतियां, वो मन का एक एस्पेक्ट, मन का एक पार्ट है, वो है हमारी संस्कार जो आते हैं बार बार, हमने जो रिकॉर्ड हो गया अंदर, जो देखा सुना बोला खाया, वो सब संस्कार बन गए। विकारों के बश गया तो विकार विकारी संस्कार बन गए, और वैसे हमने श्रीमत पे करेंगे अब अच्छे से संस्कार बन रहे। तो ये जो है हमारे अंदर हो गया। अभी जो है बाबा कहता है बच्चे पहले सच्ची दिल साफ दिल रखो, सच्चे दिल पर साहब राजी, ये बाबा की डायरेक्शन है। मैं दिल में क्या हुआ, हमने द्वापर युग से क्या किया, दिल में पहले तो हमारी देह आके बैठ गई। जैसे एक्चुअली क्या हुआ, जब आत्मा का राज्य था, स्वराज्य अधिकारी स्व माने आत्मा, आत्मा का राज्य था सतयुग में। फिर जैसे ही आत्मा की एनर्जी कम हुई 49% हुई, तो नेक्स्ट पावरफुल कौन था, मन। तो मन राजा बन गया, तो द्वापर से मनुष्य बन गए। उसके पहले हम क्या थे, देवी देवता थे, फिर हम मनुष्य बन गए। मनुष्य अब मन का कनेक्शन किससे था, पांचों कर्म इंद्रियों से। तो उसने दिल में क्या भरना शुरू किया, जो देखा ना वो दिल में चला गया, कॉन्शियसनेस में चला गया, कॉन्शियस में चला गया। जो सुना ना अच्छा लगा ना कानों को, वो दिल में चला गया। जो खाया ना कहां चला गया, दिल में चला गया। जो बोला ना अच्छा किसी को, दिल में चला गया। छुआ ना अच्छा, वो दिल में चला गया। तो ये पांचों, जिस पांचों जो तत्व थे ना प्रकृति के, जो देखे हमने, देह भी पांच तत्वों की बनी हुई थी, देह को देखा दिल में चली गई, अपनी देह देखी सबसे पहले तो अपनी देह दिल में गई है ना, कॉन्शियसनेस में गई, फिर देह के संबंधित कॉन्शियसनेस में चले गए, फिर देह के स्वभाव, देह के स्वभाव ये पांच विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये दिल में चले गए। फिर देह का संस्कार आदत क्या, देह की आदत क्या, आलस्य अलबेलापन, दूसरे में दोष निकालना, शक करना, चिंता करना, भय लगना, जल्दीबाजी करना और ईर्ष्या करना, ये 10 संस्कार आते हैं, मुख्य मुख्य आते हैं देह की, तो वो भी हमारे दिल में चले गए। अब क्या हुआ, उससे हमारा विवेक खराब हो गया। अब बुद्धि क्या करे, विवेक क्या करे, समझ नहीं आया उसको क्या करूं क्या ना करूं, कंफ्यूज हो गया ना। पहले खाली 6 गुण 7 गुणों के आधार पर विवेक था, अभी क्या हुआ, अभी अंदर तो चली गई, मुझे तो ये अच्छा लगता है, मुझे तो ये अच्छी लगती है ना, मैं तो ये खाऊंगा। अब बाबा की डायरेक्शन तो नहीं, मतलब हमारे 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 सात्विक फूड में तो नहीं आती वो चीज, मुझे तो वही अच्छी लगती है ना, वही खाऊंगा मैं तो। अब क्या होगा, वो अब विवेक क्या कहेगा, परखेगा कि ठीक है गलत है, विवेक परख नहीं सकता है। अब विवेक परखेगा नहीं तो बुद्धि की निर्णय नहीं देगी, अब बुद्धि निर्णय देगी तो चित्त क्या करेगा, चित्त में ये चीज सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। बुद्धि ने निर्णय दिया, रिकॉर्ड यहां रिकॉर्ड नहीं हुई, किंतु क्या हो गई, वो मेरे चित्त में चली गई। अब चित्त जो है क्या हुआ, पहले मेरा चित्त था शांत एकाग्र और आनंदमय स्थिति में था। इस सत्य में क्या स्थिति होती है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, दिल में सत्य है तो चित्त में आनंद है, और वही फिर मन के द्वारा हमारी कर्मेंद्रियों से झलकता था। इसे हर देवता कैसा दिखाई देता है, मुस्कुराता हुआ, नेचुरल मुस्कुराता हुआ, आर्टिफिशियल नहीं, कोई मिला तो मुस्कुराया नहीं, नेचुरल मुस्कुराते हुए है ना, नेचुरल ब्यूटी है ना। किंतु फिर क्या हुआ, अब विवेक कंफ्यूज, बुद्धि भ्रष्ट, बुद्धि भ्रष्ट हो गई और फिर चित्त चंचल हो गया, क्योंकि जो फाइल जा रही है कहां जा रही है, अभी कहां जा रही है फाइल, बुद्धि यहां मन में नहीं आ रही, कहां जा रही है, चित्त में जा रही है ना, कंफ्यूज, बुद्धि भ्रष्ट, निर्णय नहीं ले पा रही, अब वो चित्त में जाती जा रही, तो चित्त जो है चंचल हो गया। अब शांति खत्म, चित्त में शांति खत्म हो गई, चंचल हो गया, परेशान हो गया। अब जो है मन, जो है मन तो है ही पांचों तत्वों के प्रभाव में था है ना, और मन के वश में थी, अब आत्मा मन के वश में हो गई। इस तरह से हमारे विक्रम विक्रम होते गए होते गए, और अब दिल पूरा भर गया 4 बातों से, देह देह के संबंध, देह के स्वभाव, संस्कार, देह के पदार्थों से भर गया चित्त, बिल्कुल हमारी जो विवेक कंफ्यूज हो गया, बुद्धि भ्रष्ट, चित्त बहुत अशांत हो गया, और चित्त से फिर सपन आने लगे। जब हम सोते हैं ना, कॉन्शियस माइंड सो जाता है और चित्त जागृत हो जाता है, इसी सपने आते हैं, और इससे फिर जो है हमारा सब कुछ गड़बड़ हो गया। स्मृति में रिकॉर्डिंग क्या हो गई, यही देह देह के संबंध, देह के स्वभाव, संस्कार, देह के पदार्थों की रिकॉर्डिंग हो गई, वृत्ति सबके प्रति देहिक हो गई, वृत्ति में हमारी 4 बातें आ गई। अभी देखो क्या क्या आ गई, लगाव, झुकाव, प्रभाव और टकराव, जो मेरे को अच्छा लगता है उसके प्रति लगाव हो गया, इसके प्रति मेरा संबंध है उसके प्रति लगाव हो गया, जो मेरे को अच्छा लगता है उसके प्रति झुकाव हो गया। लगाव झुकाव में समझे मतलब क्या फर्क है? लगाव माना जिससे हमारा संबंध होता है उसके प्रति लगाव होता है, झुकाव जो देखने जो अच्छा लगता है, मेरा नहीं है कि तो अच्छा लगता है, मुझे कहते ना वो मुझे सचिन तेंदुलकर अच्छा लगता है ना, किसी दुनिया में बोलते मुझे शाहरुख खान अच्छा लगता है ना, अमिताभ बच्चन अच्छा लगता है, मेरा है क्या वो? मैं उससे कभी बात भी नहीं किया आज तक, पर अच्छा लगता है ना। झुकाव उसकी कोई बात हो रही होगी तो हम ध्यान उधर लगा के सुनते हैं क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, है ना, ये झुकाव। प्रभाव, तीसरा प्रभाव, वृत्ति में प्रभाव आ गया है ना। प्रभाव माना वो बहुत अच्छा व्यक्ति है उसकी उसके प्रभाव में रहते हैं हम, जैसे यज्ञ में भी किसी के प्रभाव में चले जाए, कोई व्यक्ति ऐसा है उसके प्रभाव में चले गए, मुझे इसके जैसा बनना है, बाबा जैसा नहीं, मम्मा जैसा नहीं, इसके जैसा बनना है, क्योंकि उसके प्रभाव में आ गया ना मैं, उसी जैसा वो कहेगा फिर वैसे ही करता रहूंगा। दुनिया में भी होता है ना? उसके प्रभाव में रहते हैं ना? और तीसरे चौथा टकराव। तो अभी हमारी वृत्ति ऐसी बन गई, लगाव झुकाव प्रभाव या टकराव वाली बन गई, इसके अनुसार हमारी भावनाएं खराब हो गई और उसके अनुसार ही संकल्प चलते हैं। तो ये स्थिति हो गई। ऐसे में बाबा जब आए तो बाबा ने क्या किया, ये हमको श्रीमत दी, कहते दिव्य बुद्धि दे दी बाबा ने, दिव्य हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। बुद्धि में अभी हमारे दिल में अज्ञान भरा पड़ा था, ये चार देह दे के संबंध दे के सब उसका बढ़ पड़े, तो बाबा ने तब हमको एक श्रीमत दी, बच्चे तुम देह नहीं आत्मा, पहले तो ये बात कही, ये श्रीमत दी मतलब पवित्र बनो। अपवित्र का मतलब क्या है? पवित्र का मतलब क्या है? पवित्र का मतलब सूक्ष्म मतलब में जाओ, पवित्र का मतलब है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य माना जैसे ब्रह्म तत्व में रहके आत्मा एक दूसरे को देखती हैं, कैसे देखती हैं, कैसा आचरण करती हैं, आत्मा आत्मा को क्या देखती है वहां पे, तो ऐसा ही यहां दुनिया में रहो, भले देह के साथ हो कि तो ऐसे रहो, यह है संपूर्ण पवित्रता। किसी की देह पे नजर भी ना जाए, सिर्फ आत्मा सितारा नजर आए, यह है संपूर्ण पवित्रता। तो ऐसी स्थिति बनाओ, इतनी पवित्रता ना, तो ये पवित्र भव जो बाबा ने कहा आज्ञादीप सदा पवित्र भव निरंतर योगी भव है ना, तो इस पवित्रता की ये हमको बाबा ने ये हमको पहली पहली धारणा ये हमको ज्ञान दिया, बुद्धि में ये भर दिया, ये दिव्य बुद्धि बाबा ने हमको दी, ये बाबा ने भर दिया, बच्चे तुम देह नहीं, तुम स्थूल देह अपने आप को समझते हो, तुम स्थूल देह नहीं हो, तुम अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, इस देह को चलाने वाले अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, और इस तुम्हारे मैं और तुम मेरी संतान हो, इसकी संतान नहीं हो, तुम देह के तुम्हारे देह के मां बाप है, तुम मेरी संतान, मैं भी तुम अति जैसे तुम हो ऐसे अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम में रहने वाली, परम धाम में रहने वाला, और तुम सब आत्माओं का बाप हो, और तुम्हारे सर्व संबंध मेरे साथ हैं। और चौथा बताया बच्चे, जो ड्रामा है ना संसार रूपी ड्रामा, ये ड्रामा जो है ये जो ड्रामा बना हुआ है ये एक नाटक है, इसमें तुम सब आत्मा एक्टर्स हो और कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हो, कोई तुम्हारे पति बना, कोई तुम्हारी पत्नी बनी, तुम्हारे मां बाप बने, तुम्हारे बच्चे बने, वो कर्म सिद्धांत के अनुसार बने, किस अनुसार बने, वही लेडी मेरी, वही लड़की, वही जो मतलब जो लेडी है या फीमेल वो मेरी, वही मेरी पत्नी क्यों बनी, या वही मेरा पति क्यों बना, क्योंकि उससे हिसाब किताब है लेने देने का। एक थानेदार है, सीआई है, घर में बाहर तो थानेदार है, घर में थानेदार है क्या, घर में थानेदार है, वो घर में कौन थानेदार है, बाहर आईजी है ना, इंस्पेक्टर पूरे पूरे राजस्थान का आई मतलब पुलिस कमिश्नर है, और घर में उसका बच्चा घर में आता है ना तो उसका बच्चा उसकी नाक पकड़ लेता है, कान खींच लेता है, तो वहां पर उसकी बाहर पकड़ सकता है उसकी नाक को, कान पकड़ सकता है, क्योंकि उसने उसका लेने देना है बाकी है। वो बाप, वो एक बाप अपने किसी किसी से कोई से 50 रुपए 100 रुपए मांगे ना, 100 रुपए देता नहीं बाप उसको, उसको मतलब एक आदमी बाहर घूम रहा हो और कोई भिखारी उसे कहे भाई साहब मुझे 100 रुपए दे दो, मेरे को अब मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, 50 रुपए दे दो, चलो 50 दे दो,
और उसका बच्चा कहे पापा दो 2000 रुपए दे दो मेरे को वहां जाना है, तो क्या कहे पापा कहेगा, क्या कहेगा, 2000 नहीं पड़े तो 2500 ले जा, क्या पता ज्यादा लग जाए, है ना, क्यों हिसाब किताब है ना। तो ये नाटक है, कोई मुझे दुख दे रहा है, क्यों दुख दे रहा है, दुख दिया हुआ है इसलिए हक से दुख दे रहा है, नहीं? कोई मुझे गाली दे रहा है, हक से गाली दे रहा है, तो ये क्योंकि मैंने गाली दी हुई है और उसकी गाली बड़े प्यार से हम सुनते भी हैं, तो बाबा कहते हैं ये नाटक है। तो कर्म सिद्धांत के अनुसार इसलिए, और मैं इसका डायरेक्टर हूं, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट से डायरेक्शन दे रहा हूं, इसलिए अभी तक जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अभी तो अच्छा क्यों हो रहा है, क्योंकि बाबा हमारे साथ है, और जो होने वाला है आप सत्युग में जाने वाले हैं। तो ये जो है, ये जो मैं बार बार बाबा ने ये हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, ये दिव्य बुद्धि बाबा ने दी है, अब ये हमारे अंदर भर गया है बुद्धि में। पहले बुद्धि में क्या भरा हुआ था, मैं ये हूं, ये मेरी मां है, ये मेरा बाप है, ये बहुत अच्छा है, ये ऐसे बहुत खराब है, इसका ये है, इसका ऐसा है, ये है, इसका, बस यही भरे हुए थे बुद्धि में, जो हुआ मैं करता हूं, खुद करता हूं। तो ये दिव्य बुद्धि का हमें सबसे पहले ये दिया, और फिर ये हमको दे करके और फरमान क्या दिया कि बच्चे देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों को बुद्धि से भूलो, निकालो पहले, फिर अपने को आत्मा समझो, फिर आत्मा समझ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने ये भी करते रहते हैं, वो भी करते रहते हैं, ये पॉसिबल नहीं। पहले अपनी बुद्धि से बार बार चलते फिरते हमें यही अभ्यास करना होता है, ये बाबा की श्रीमत है। कोई कहता है हमारा अमृत अमृत वाले बैठते हैं, हमारा योग नहीं लगता, कैसे लगेगा योग, उस समय कोशिश करना शुरू करते हैं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा ऐसे करके, और फिर उसमें नहीं करना है, सारा दिन चलते फिरते अभ्यास करना, खाते पीते हर काम करते अभ्यास करो कि मैं कौन हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति, मैं अभी निकल जाऊं देह तो मट्टी हो जाएगी, मेरे संबंध उसके साथ है, एक ही संबंध की अनुभूति में जाओ, है ना। और फिर ड्रामा को बार बार, जो आत्मा हमें दुख दे रही है, जिसने हमें धोखा दिया, नहीं देखो मैंने शायद इसको दिया हुआ था, इसने मेरा हिसाब किताब पूरा हो गया, जो हुआ अच्छा हुआ, कोई बात आए जो हुआ अच्छा हुआ। अधिकतर क्या होता है, आदमी कहां रहता है, आदमी या मतलब हम आदमी माना दोनों आ गए, बहने भाई दोनों आ गए, आदमी का मतलब खाली मेल की बात नहीं कर रहा हूं, भाइयों की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों को, दोनों की बात कर रहा हूं। ज्यादातर हम कहां रहते हैं, तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। पास्ट माना जो, पास्ट माना जो बीत गया, उसमें जो हमें लोगों ने दुख दिया, साइकोलॉजिकल और इमोशनल हर्ट हमें किया, हमें हर्ट किया, हमें चोटें पहुंचाई हैं, मन को और भावना को चोटें पहुंचाई हैं, उसमें ही खोए रहते हैं, उसने मेरे को ऐसा किया, उसने मेरे को ऐसा किया, उसने मेरे साथ धोखा किया, उसने मेरे को ये किया, उसने मेरे को ऐसा बोला, उसी वही विचार चलते रहते हैं ज्यादातर, और या फ्यूचर में, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के बारे में चलता रहता है, इसलिए विचारों की स्पीड फास्ट रहती है, इसलिए हमें हर समय चिंता लगी रहती है, डर लगता रहता है, इनसिक्योरिटी लगती रहती है, चिड़चिड़ापन, विचार तेज चलते हैं, चिड़चिड़ापन आता रहता है, और हमेशा हम ये बोलते हैं मैं बहुत बिजी हूं, मैं कर कुछ भी नहीं रहे, मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत बिजी हूं, टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं कुछ नहीं कर रहे होते, गप्पे मार रहे होते हैं ना, टीवी के सामने बैठ के 4 घंटा वेस्ट कर देते दुनिया वाले, और कहते बहुत बिजी हूं मैं तो, है ना, विचार तेज चल रहे हैं, जितने तेज विचार होते हैं ज्यादा आदमी बिजी महसूस करता है। और बाबा ने क्या कहा, बच्चे ये चारों बातों को निकालो, ये जड़ है, इन चारों को बुद्धि से निकालो, दिल से निकालो, बार बार जैसे देह के बारे में बात करो, फिर देह के संबंधों के बारे में, जब मैं आत्मा हूं तो मेरा संबंध आत्मा देह से नहीं, मेरा संबंध तो उससे है, इनके प्रति मेरा फर्ज है, अकाउंट है, इनके प्रति मेरा क्या है, बंधन है, संबंध उससे है, इनसे बंधन है। और फिर चौथी बात क्या करनी, देह के पदार्थ, देह के पदार्थ नहीं, हम इसमें से सुई भी लेके नहीं जा सकते साथ में, ये तो यहीं रहने वाले, हमें जो साथ में जाएगा क्या जाएगा, दैवी गुण, आत्मा की प्रॉपर्टी दैवी गुण है। दैवी गुण कैसे बनते हैं, जब 7 गुण अंदर भरपूर हो जाते हैं ना आत्मा के अंदर, तो जब कर्मों में जब वो 7 गुण कैसे आते हैं, सत्यता के रूप में आएंगे, ट्रूथफुलनेस है ना, हर बात में सच बोला जाएगा, झूठ नहीं बोला जाएगा, डर नहीं होगा ना, निर्भयता होगी, निर्भयता चेहरे पे दिखाई देगी, मीठे बोल निकलेंगे, धैर्यता होगी, 7 जो ये दैवी गुण क्या कैसे बनते हैं, 7 गुणों के मिश्रण से दैवी गुण बनते हैं। अंदर सात गुण भरे हुए हैं, है ना। जैसे अंदर कॉफी 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 की मशीन होती ना, कॉफी पाउडर डाल दो, पानी डाल दो, चीनी डाल दो, क्या बांधती, क्या निकल के बाहर, क्या निकलती बनके, पानी निकलता है क्या, मिक्स होके कॉफी, झाग वाली कॉफी निकलती है ना। ऐसे ही जब अंदर सात गुण भरपूर होंगे तो ठीक रेशियो में डालेंगे तो फिर अंदर बाहर से ये दैवी गुण मिलके सत्यता माना, ज्ञान, पवित्रता, शांति और शक्ति, ये चार चीज मिलके क्या बनती है, सत्यता बनती है ना। पवित्रता कैसे, निर्भयता कैसे बनती है, मधुरता कैसे बनती है, ये सातों गुणों के भिन्न भिन्न मिश्रण से ये सात दैवी गुण बनते हैं। तो इस तरह से हमारे कर्मों में वो चीज आने लगती है। तो ये दैवी गुण हमारे आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार, ये जो है दैवी गुण है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हमेशा हमारे साथ रहती है, ये कभी विनाश को नहीं पाती, ये हमारे साथ जाती है। तो ये चार चीजें सदा हमारे साथ जाती हैं। आत्मा है, आत्मा साथ जाएगी, आत्मा बाप के साथ जाएगी, बाप के साथ एक संबंध की अनुभूति जाएगी, और हमारे दैवी गुण हमारे साथ जाए। ये दैवी गुण आत्मा की प्रॉपर्टी है। तो ऐसे बार बार अपने आप को अनुभव करते करते फिर जब इसको कर लेंगे तो अपने को बार बार चलते फिरते अपने को आत्मा समझेंगे, आत्मा समझ के परमात्मा को फिर मामेकम याद रहेगा, फिर कोई और याद नहीं आएगा। जब बीमारी होगी ना, सिद्ध हार्ट में दर्द होगा, डॉक्टर याद नहीं आएगा, कौन याद आएगा, शिव बाबा याद आएगा। सिर दर्द हो रहा होगा ना, कौन याद आएगा, शिव बाबा को मालिश करनी आती है क्या, शिव बाबा बहुत अच्छी मालिश करते हैं ना, शिव बाबा बहुत अच्छी मालिश, कभी सिर दर्द हो रहा करा के देखना, बाबा को इतनी बढ़िया चंपी करनी आती, बात मत पूछो, है ना, है ना। तो कुछ भी तकलीफ हो रही ना बाबा, फिर बाबा याद आएगा, फिर बाबा ही टच करेगा बच्चे, तो इसको नहीं, इसको कभी होगा ना, बाबा कहेगा बच्चे तू उस डॉक्टर के पास चला जा, तुम्हारा उससे उस डॉक्टर से हिसाब किताब है तो उसके पास जा, है ना। पड़ोस वाले डॉक्टर को नहीं बोलेगा, उससे हिसाब किताब नहीं होगा तो उसके पास उसको नहीं बोलेगा, बच्चे तू वहां जा, 50 किलोमीटर दूर पे डॉक्टर बैठा ना, उसके पास जा, क्योंकि तेरा उससे हिसाब किताब है ना, उसके पास जाके तो ठीक होएगा। तो बाबा टच करेगा आपको, है ना। छोटी मोटी हो जाता है तो बाबा अपने वहीं ठीक कर देता है, नहीं तो फिर कुछ हिसाब किताब होता है बाबा वहां भेज देता है, नहीं तो इधर इधर डॉक्टर पड़ोस में डॉक्टर बैठा उसके घर उसको दिखाता रहता है, हिसाब किताब चुकतू नहीं होगा, ठीक भी नहीं होगा, चुकतू भी नहीं होगा। तो कोई तकलीफ होने पर बाबा ही याद आएगा, ठीक है। तो बाबा याद आवे, कैसी भी तकलीफ होवे, मन की, तन की, धन की, जो तकलीफ होवे, जो प्रॉब्लम होवे, ठीक है, ये बाबा से जैसे हर बात मैंने देखा जब मैं आज से लगभग साढ़े पांच साल हो गए जब मेरे को हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना पड़ा। मैंने मना किया था मुझे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखना है, मैं तो हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट काम करूँ ना, उसमें भी मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो मुझे ये ऊपर से क्यों काम दे रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप, फिर मैंने बाबा से पूछवाया, दादी गुलजार जी से कहा, तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें सीख लो, इससे तुम्हारे अंदर कई दैवी गुण आएंगे। बाबा का ये मैसेज था कि बच्चे तुम्हारे अंदर दैवी गुण बहुत सारे भरेंगे इससे। तो सचमुच में मैंने देखा, मैं सोचता था पहले अपने मस्त रहता था, मैसेज मेरे अंदर बहुत सहनशीलता है ना, बहुत समाने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है। अब 300 लोग मेरे सामने रहते हैं हमेशा, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, सबके अलग अलग स्वभाव संस्कार है, है ना। तो मुझे क्या हुआ वहां पर जब देखता हूं ना, तो किसी में शुरू शुरू में तो मैं सबको समझाने की कोशिश करता था कि तुम्हें देखा अभी सहन करते रहो, समाते रहो, सहयोग करते रहो, और जो आए उसे टोली खिलाते रहो, है ना, सबसे बढ़िया तरीका है ना? किसी को डांटना नहीं, किसी को कुछ कहना नहीं, है ना, प्यार से जो आया ना मुस्कुराओ, उसको टोली खिलाओ, अच्छा अच्छा बहुत अच्छे आप, बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा करते हो, है ना। वो अपने आप ही पानी पानी होकर अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं। किसी को उसकी उसकी कमजोरी याद दिलाओ, तुमने ये गलत किया, तो और ज्यादा तेज होकर वो गलत काम करते हैं। तो मतलब मैं अपने आप ही दैवी गुण अपने अंदर से बढ़ते जाते हैं। तो जितना हम बार बार ये करते जाते तो उतनी शक्ति बढ़ती जाती है ना। तो बाबा की श्रीमत यही बाबा की श्रीमत है। तो जितना अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते सातों गुण बढ़ते जाएंगे, और सातों गुण भरने से फिर क्या होगा आपके अंदर, फिर ये दैवी गुण आपके कार्य व्यवहार में आते जाएंगे। इसलिए दादी जानकी ने एक बार बहुत अच्छी बात बताई थी, आपको शायद सुना हो, ध्यान में हो, कि पहले हम विक्रमाजीत बनेंगे। क्या बनेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने बाबा की याद की, थोड़ी देर में गुस्सा कर लिया, किसी को आंख दिखा दी, है ना। तो अभी विक्रम किया कर दिया ना, बाबा ने कहा थोड़ी देर तो आप जमा करते हो और थोड़ी देर में ना कर देते हो, जमा जितना कमाया ना सारा खर्च कर देते हो। कल की संडे की मुरली थी ना, कि हमने जो 63 जन्म के पाप कर्म तो बड़ी बात नहीं है, कि तुझे ब्राह्मण बन के जो हम विकर्म कर रहे हैं संस्कार के वश, ये संस्कार बने हुए ना, मूल संस्कार जो ना अभी जल्दी चिंता गुस्सा ये जो हम आदत बन गई ना हमारी सेंसिटिव नेचर, इसके वश हम गलत कर्म कर रहे हैं। संस्कार है स्वभाव, स्वभाव के वश, आलस के वश, नाम मान 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 नाम मान शान के वश, ज्ञान की बुद्धि के अभिमान के वश है ना, आलस्य अलबेलेपन के वश कर रहे ना। बाबा ने कहा था ना कल 6 बातें बताई थी बाबा ने, तो ये ज्यादा बड़े ये इसका 100 गुना दंड मिलता है। तो ये बाबा ने इस बात को बड़ा क्लियर किया कि अच्छे जितना अपने तो विक्रमाजीत पहले बनेंगे, अपने इतनी अटेंशन रखो हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास में अटेंशन रखो कि मेरा अभी विक्रम बन रहा है कि विक्रम विनाश हो रहा है। खाली अमृत वेला विक्रम विनाश नहीं करना, हर सेकंड विक्रम विनाश करने की अटेंशन रखो। सुबह तो बहुत तेजी से होते हैं कि दिन में भी हम विक्रम विनाश कर सकते हैं, तो विक्रम विनाश दिन में भी करो, रात को भी करो, सोने के पहले भी करो, तो हर सेकंड अटेंशन रखो। तो जब विक्रमाजीत, जब पहले विक्रमाजीत बनेंगे ताकि बाबा की बुद्धि हमारी श्रीमत हमारी बुद्धि में इतनी श्रीमत रहेगी जितना मुरली, मुरली को क्या करने का, मैंने बताया, मैं कई बार वैसे बताता हूँ क्लास में कि मुरली हमेशा कहाँ रखते हैं, मुरली प्रेम पत्र है ना, लव लेटर है ना बाबा का, लव लेटर कहाँ रखते हैं, दिल के पास नहीं। और फिर लव लेटर कैसे पढ़ते हैं, किसी को अनुभव है, दिखा के नहीं पढ़ते हैं है ना, जेब से निकाला यूं देखते हैं ना, मुस्कुराते हैं, फिर उसको जेब में तुरंत लग देते हैं। ऐसे दिन में कितनी बार पढ़ना चाहिए, जितने मौका मिले, 20 बार, 25 बार, 30 बार, 50 बार, 100 बार, एक एक लाइन पढ़ो, फिर सोचते रहो कि बाबा ने मेरे लिए आज ये कहा था, बाबा की डायरेक्शन थी, बाबा की आज श्रीमत मेरे लिए थी। बच्चे ऐसे से करना, बच्चे याद से याद मिलती है ना, तुम मुझे याद करोगे मैं भी तुम्हें याद करूंगा, तुम मुझे याद नहीं करोगे मैं भी तुम्हें याद नहीं करूंगा ना। जितना पवित्र बनोगे तो कशिश होगी, तुमको मेरी कशिश होगी, मेरे को तुम्हारी कशिश होगी, ऐसे लगेगा सामने खड़े आमने सामने खड़े। जैसे प्रेमी प्रेम का क्या होता है, होते 1000 किलोमीटर दूर है लगता है सामने खड़े हुए, बुद्धि में वही समाये रहते हैं ना। तो ऐसे बाबा फील होना चाहिए। सूक्ष्मता कितनी दूर है हमसे, कितनी दूर है, एक सोच की दूरी पर है ना, सोचे और पहुंचे। बाबा की गोद कितनी दूर है, सोचे और परम धाम कितनी दूर है, सोचे और जयपुर कितनी दूर है, सोचे और पहुंचे नहीं। अपने कहीं जाना हो ना, अपने ड्राइंग रूम में, अपने घर जाना हो तो कितनी देर लगेगी, मन से सेकंड में पहुंचे ना। ऐसे ही बस बार बार, तो जितना ये बाबा की श्रीमत को हम बार बार, ये मुरली को पकड़ के रखो। बस बाबा दो ही चीज ट्रूथ है दुनिया में, बाकी सब झूठ है। एक बाबा सत्य है और एक बाबा की मुरली सत्य है। यही श्रीमत है, यही समझानी है, यही शिक्षा है और यही डायरेक्शन है और यही फरमान है। तो जितना हम बाबा की श्रीमत को पकड़ के रखेंगे, मैं तो कहता हूं मुरली, एक बार मेरे को ध्यान ऐसे मैंने चिंतन किया था, फिर बाबा की मुरली में ही पढ़ा एक बार हमने, कि जैसे हम 16,000 सांस एक दिन में लेते हैं, एक दिन में हम 16,000 सांस लेते हैं, 14 दिन के टाइम लेते हैं, रात में 10 लेते हैं, आप इनके खुद देख लेना काउंट, गुणा जमा करके देख लेना, 16,000 के आसपास सांस लेते हैं। अब जो 8 रत्न कौन बनेंगे, 100 रत्न कौन बनेंगे, 108 की माला में कौन आएंगे, 16,000 में कौन आएंगे, 9 लाख में कौन आएंगे, इसके आधार पे जिनको श्वासों श्वास मतलब हर सांस में बाबा की याद है और बाबा की मुरली याद है, किसमें, मैं दिन में 16,000 बार जिनको याद है ना, 16,000 बार जिनको रात में उठा के ही पूछो बाबा ने आज क्या कहा था, क्या कहा था पापा ने आज, बाबा का वरदान क्या था आज, खाली स्मृति में नहीं, इमर्ज रूप में रहे, महसूसता की शक्ति, महसूस कहता ना दिल की महसूसता द्वारा है ना, स्व परिवर्तन करने वाले है ना, स्व परिवर्तक भाव है ना। तो स्व परिवर्तक बाबा ने एक आज एक कहा कि दिल की महसूसता कौन सी, कि स्वस्थिति सबसे बड़ी चीज है, परिस्थिति बड़ी नहीं, परिस्थिति पेपर है, स्वस्थिति ये फील होना चाहिए, स्वस्थिति क्या है, आत्मिक स्थिति क्या है, बेहद की स्थिति है। ब्राह्मण माना क्या, ब्राह्मण माना जैसे ब्रह्मा माना, ब्रह्मा माना बेहद, मां माना बेहद की मां, सारे विश्व की मां, ऐसे ही ब्राह्मण माना, ब्राह्मणा बेहद, जिसका मन और बुद्धि बेहद में रहे सदा, वो है ब्राह्मण। मनुष्य हद में रहता है, जिसकी मन और बुद्धि हद में रहती है, और ब्राह्मण में जिसकी मन और बुद्धि सदा बेहद में रहे। तो ये हमको अटेंशन रखने की आवश्यकता, हम ब्राह्मण है, ऐसा ब्राह्मण ही बाद में जाके फरिश्ता बनेगा और फिर जाके वो देवता बनेगा। फरिश्ता माना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, अर्थात जिसका मन स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प में सिर्फ बाबा समाया हो, स्मृति में बाबा हो, वृत्ति बाबा जैसी हो सबके प्रति आत्मिक, भावना सबके प्रति शुभ हो जैसे बाबा की सबके प्रति शुभ है, कल्याणकारी भावना संकल्प सदा श्रेष्ठ हो, शुद्ध हो, शक्तिशाली हो, कल्याणकारी हो बाबा के समान, वो है फरिश्ता। अभी हमारे मन में स्मृति में कुछ कुछ भरा हुआ है पुराना भी, ये ऐसा है वो वैसा है, वो बता ना चार बातें लगाव झुकाव टकराव की बातें भरी हुई है, वो वृत्ति सबके प्रति आत्मिक नहीं है। अभी किसी के प्रति लगता है मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, वो वृत्ति से परे चले जाए, वो स्मृति से परे चले जाए। तब बाबा ने कहा स्मृति अपनी वृत्ति और वाइब्रेशन, मतलब वृत्ति और भावना के आधार पे तब वो जो सेवा होगी वायुमंडल बनेगा, वाइब्रेशंस बनेंगे, अंत में अभी मनसा सेवा उसके आधार पे हमारी हजारों मील दूर तक मनसा सेवा होती रहेगी, सामने आने वाले तुरंत बदल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह श्रीमत द्वारा, श्रीमत माना श्रीमत सबसे बड़ी श्रीमत यही है पवित्रता की, पवित्रता मतलब अंत अल्टीमेट लास्ट में मैं आता हूं सच्चा सुख, सच्चा सुख माना हमारी मनसा में भी शांति और सुख की अनुभूति होती रहेगी इस फीलिंग के द्वारा ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी, क्योंकि ब्रह्मचारी तो बन गए आत्मा आत्मा के लिए निराकारी लेवल पे बन गए, किंतु करके किसने दिखाया, ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। तो ब्रह्माचारी बाबा ने कैसे घर परिवार में रहते हुए 380 भाई बहनों को संभालते हुए कैसे वो सबसे न्यारा प्यारा रहा, कभी एक बार भी किसी ने उनको देखा नहीं किसी में जरा भी किसी को आंख दिखाते हुए, किसी को मतलब जल्दीबाजी में, है ना, किसी ने देखा नहीं, कभी थोड़ा सा घबराए हुए, कितने लोग आए कितने, कभी घबराए हुए देखा नहीं, किसी ने डरते हुए नहीं देखा, किसी के प्रति मोह नहीं देखा बाबा के अंदर, अपने बच्चे के प्रति भी मोह नहीं देखा, नारायण के प्रति भी मोह नहीं देखा, जरा भी किसी बात का अहंकार नहीं देखा, किसी ने भी देखा नहीं। किसी दादियों से हम इतने अनुभव सुनते हैं, इतने दादियों के पास जाके बैठते हैं, कई बार दादियां सारी अंतरंग अनुभव भी सुनाती हैं अपने, कभी भी किसी के मुंह से नहीं सुना हमने, ऐसा प्रैक्टिकल। तो बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया हम भी तो बाबा के हम जिन्स हैं, हम भी तो बाबा जैसे, जैसे बाबा ग्रस्त में था प्रवृत्ति में था ऐसी तो हम भी हैं, हम भी है ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ब्रह्माचारी है ना, तो ऐसी स्थिति जब होगी, जैसी ऐसी स्थिति होती है वही मनसा में उसको सदा सुख और शांति की अनुभूति रहेगी। शांति माना मन में कोई विचार नहीं चलेंगे, व्यर्थ विचार, नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं, नेगेटिव माना विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से प्रेरित, और व्यर्थ माना आलस्य में प्रेरित, आलस्य के वजह से, अलबेलेपन की वजह से, चिंता की वजह से, चिंता के विचार, भय के विचार, शक के विचार, अनुमान के विचार, वो ऐसा है वो ऐसी है वो कैसा है इसके विचार, है ना, जल्दीबाजी के विचार, ईर्ष्या के विचार, या कहें तो क्या क्यों कैसे, है ना, क्या क्यों कैसे कब, ये जो विचार, ये विचार, शांति माना इन विचारों से बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी, और सुख माना अतिंद्रिय सुख की अनुभूति उतरेगी। जो पवित्र है, जितना पवित्र है उतना बाबा के नजदीक है, जितना पवित्र है उतना अच्छा हमारा योग है, जितने परसेंट की पवित्रता है ना उतना परसेंट का हमारा बाबा से योग है, पवित्रता के आधार पर योग है। जैसे आज की मुरली थी ना पवित्र कशिश, है ना, वो कशिश, वो कशिश, तो ऐसे पवित्रता, तो मनसा भी सुख शांति वाली होगी और हमारा सारा कुछ, मतलब जैसे बोल भी सुख शांति माना सत्यता और मधुरता वाले होंगे, और कर्म भी हमारे कैसे होंगे, सुखदायी होंगे। तो ऐसे हम चलते जाएंगे, और ये चार पर मैं लास्ट में रिवाइज कर देता हूं, सच्चे ब्राह्मण के चार नियम है। सच्चा ब्राह्मण कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करता है, पावरफुल अमृत वेला, ऐसा अमृत वेला होना चाहिए, कम से कम आधा घंटा तो कम से कम आनंद की स्थिति होनी चाहिए, बस बाबा और मैं इसमें खो गए, और उससे ही फिर हमारी बीज रूप स्थिति बनती है, उसमें विक्रम विनाश होते हैं। और दूसरा मुरली, सच्चा ब्राह्मण कभी भी मुरली मिस नहीं कर सकता, बिना मुरली सुने कभी कुछ मुंह में डालेगा नहीं, वो नाश्ता नहीं करेगा। मेरा तो ये नियम है ना, 29 साल से जब से मैंने बाबा को पहचाना ना, मैंने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की, चाहे कितना भी बिजी क्यों नहीं रहा। खाली मुरली तो सुबह सुबह पढ़ लेता हूं, किंतु मुरली कभी क्लास में जाने का, भले मैं लेट हो जाऊं पर जाऊंगा जरूर। 7 बजे पेशेंट आ जाए ना मेरे पास, तो 7-7:30 तक पेशेंट देख के भी मैं 7:30 भी क्लास में आऊंगा, क्योंकि चाहे मुझे लास्ट में वरदान स्लोगन सुनने को मिल जाए, किंतु क्लास माना पालना, क्लास माना मुरली खाली पढ़ने से पालना नहीं मिलती है। क्लास में जाते हैं ना, सामने टीचर बैठे, कोई बैठी हो टीचर, कोई भी सुना रही हो, कि तू पालना बाबा की पालना मिलती है, साथ में शक्तियां भी मिलती हैं। इसलिए क्लास कभी मिस नहीं करो। क्लास मुरली के आधार पे मैंने बताया ना, 16,000 जो श्वास मुरली जिनको याद रहती है, बाबा और मुरली याद रहता है, वो अष्टतन में आते हैं। जो दिन में 100 बार मुरली के पॉइंट उनको याद रहते हैं, बाबा और मुरली याद आती है, वो 108 की माला में आते हैं। मतलब 1 घंटे में 6 बार, ज्यादा बार नहीं, कितनी बार, हर 10 मिनट में बाबा जिनको याद आ जाए ऑटोमेटिक, या मुरली के पॉइंट्स याद कर ले हर 10 मिनट में, वो 108 की माला के दाने बनते हैं। और जो दिन में कम से कम 8 बार, 8 पहर होते हैं दिन में ना, 3 घंटे का एक पहर होता है, जो दिन में कम से कम 8 बार मुरली को रिवाइज करते हैं, वो 16,108 की माला में आते हैं। और जो रोज एक बार अमृत वेले, मतलब सुबह सुबह 7 से 8 क्लास में जाके मुरली सुनते हैं, वो 9 लाख में आते हैं, ठीक है। और जो 1 घंटा लेट होते हैं, वो उनका एक जन्म कम हो जाता है। बाबा की मुरली में है ये, आप पढ़ना अमृत वाला वाली किताब में ना, 2 नंबर पेज पे है। जो 1 घंटा लेट हो गए मुरली में, 8 बजे पहुंचते हैं, एक जन्म लेट। 2 घंटा लेट हो गए तो 9 बजे आते हैं मुरली सुनने, तो 2 जन्म लेट हो गए, है ना। और जो 3 घंटा लेट हुए, 10 बजे आए तो कितने घंटे लेट, 3 जन्म लेट, ठीक है। ये बाबा की मुरलियों में ये बात लिखी हुई है ना, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो मुरली, और चौथा सारा दिन कर्मयोगी स्थिति, कर्म योग का बैलेंस हो गए, ठीक है। ये बाबा की डायरेक्शन है, ये बाबा की डायरेक्शन है जो मैं बता रहा हूं ना, कर्म और योग का बैलेंस होना चाहिए। और चौथा सोने, कर्मयोग का बैलेंस माना यही चलते फिरते बाबा की याद रहे, बाबा की मतलब मुरलियों के बाबा की क्या डायरेक्शन थी, बाबा का कहना मेरा करना, बाबा ने मुरली में कहा मुझे शाम तक कर ही लेना, उसका स्वरूप बन जाना। तो फिर तो चौथा सोचो था, सोने के पहले लेटर लिखो, पोता मेल दो अपने बाबा को, बाबा सुबह से लेकर रात तक, रात में ये मैंने किया, यहां गलती हो गई, यहां पे अच्छा बुरा सब बताओ, साइन करके बाबा को दे दो, फिर चार्ट भर के, फिर बाबा की मुरली पढ़ के सो। मैंने देखा बाबा की मुरली पढ़ के सोते रात में दोबारा से, तो नींद बहुत अच्छी आती, सपने खराब नहीं आते। और बाबा को टाइम पे, बाबा एकदम 3:30 बजे आंख खोल देता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अलार्म बजे, अलार्म बाद में बजता है या गीत बाद में बजता है, पहले उठ जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 नियम है, 4 मर्यादाएं, पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वपन तक भी पवित्रता, वैध संकल्प भी अपवित्रता है, ठीक है। तो जितनी पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाती उतना योग लगता जाएगा। शुदन, शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में भोजन बनाओ, बाबा की याद में खाओ, पराठा पकौड़ा समोसा मिठाइयां, ये सारी तासिक भोजन है, आलस्य आएगा, अलबेलापन आएगा, ठीक है। तामसिक तो ये खाते ना, खैर हम तो खाते नहीं, सभी ब्राह्मण लहसुन प्याज तो खाते नहीं, इवन जो चाय कॉफी है ना ज्यादा पीना, ये भी तामसिक आता है। कभी कभी 6 महीने में एक बार पी ली अलग बात है ना, पर रोज उसके बगैर काम ही ना चले वो गलत बात है, ठीक है, ओके। और फिर चौथी व तीसरी बात, सत्संग, सत्य संग सर दो ही है, बाबा और बाबा की मुरली, और सब कुछ कुसंग है। कई लोग ये पढ़ते हैं ना किताबें, दूसरे दूसरी किताबें पढ़ेंगे, विदेशी लिटरेचर पढ़ते हैं, उसकी किताब पढ़ेंगे, मन के ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, वो नहीं पढ़नी चाहिए, सिर्फ बाबा की मुरलियां। इधर उधर की और चीजें पढ़ने की किताबें, और किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इवन किसी क्लास व्लास भी ज्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं, बस बाबा और बाबा की मुरली, मुरली में जो सत्य मिला हो ना, मिलावट नहीं है, और किसी के मन की बात नहीं है, तो बाबा और बाबा की मुरली का संग करो बार बार, बाबा उस पर खूब अध्ययन करो, मनन चिंतन मंथन, मंथन माना फिर बाबा से जूस निकलवाओ उसका, मंथन करो, अपना सोच लो खूब, फिर बाबा बाबा से डायरेक्शन लो, फिर बाबा बताता बच्चे नहीं इसका मतलब ये है, फिर उसको उसको सिमरण करो बार बार, फिर स्मृति स्वरूप बनते जाओ। तो ये जो है पवित्रता, शुद्धन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा। कभी गलती से भी गुस्सा नहीं करो, कभी गलती से भी कोई बात में उदास मत हो जाओ, क्योंकि एक बार गुस्सा करते तीन दिन तक आपका दिमाग खराब, तीन दिन तक पावरफुल योग नहीं लगेगा, फिर उदास हो गए ना एक बार तो चार पांच दिन तक मूड ऑफ ही रहेगा, दोबारा वैसा करंट नहीं आएगा बाबा से। इसलिए कभी गलती से भी किनारा कर लो, जहां पर ऐसी स्थिति हो किनारा कर लो थोड़ी देर के लिए, फिर वापस नहीं तो ऊपर चले जाओ, वो सामने बोलता रहे आप ऊपर चले जाओ, कहां पर सूक्ष्म वेतन में, कितनी दूर है सूक्ष्म वेतन, एक सोच की, ठीक है, वो बोलता रहेगा, जब बोल के पूरा हो जाए तो आप नीचे आ जाओ। ओम शांति।
खुशियों से बाग दिल का रहता खिला खिला, मन गुनगुनाता है आपके गीत गाता है, हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का चिला, हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का चिला, ओ बाबा
ओम शांति। प्यारे बाबा की श्रीमत के सच्चे सुख में समाये हुए, डूबे हुए, नयन चैन और वरदानी बोलों से जो आपने हमारी श्रीमत के सच्चे सुख को भरपूर किया है, हमारी टीम को, मन की टीम को, बुद्धि के चार एस्पेक्ट को और ब्राह्मण जीवन के सच्चे लक्षणों को और ब्राह्मण जीवन की चार नियमों पर जो श्रीमत की हूबहू धारणा का हमारे को प्रकाश दिया है, हम सभी फरिश्ते ये आज इस सुंदर वायुमंडल में अपने आप से संकल्पित होते हैं कि हम 16,000 श्वास लेते हुए प्यारे बाबा की यादों में सदा विजयी रत्न अवश्य बनेंगे। ऐसे संकल्प के साथ हम आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार डॉक्टर सतीश गुप्ता जी को धन्यवाद शुक्रिया करते हैं कि मौन भट्टी हमें बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए और स्वयं के जीवन में सच्चा श्रीमत का सुख अवश्य प्राप्त करने में हमें मददगार होगी। धन्यवाद। ओम शांति।